आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक क्षितिज का पार्ट 9, मंगलेश डबरियाल जी की लिखी हुई कविता संगतकार। तो कविता में हमने पढ़ा था कि लेखक ने बताया कि संगीत के क्षेत्र में जो मुख्य गायक होता है उसके अलावा उसके सहायक कलाकारों, सहायक गायकों की भी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो अपने स्वर को दबा के, अपनी आवाज को नीचे करके मुख्य गायक को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, और जो ये वो काम करते हैं उसे इनकी कमजोरी ना समझ के हमें इनकी मनुष्यता समझनी चाहिए कि इनमें त्याग की कितनी भावना होती है, दूसरे को सहारा देने की, दूसरे की हिम्मत बढ़ाने की जो इनकी आदत है, जो प्रवृत्ति है, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। साथ ही इनका जो योगदान होता है उसको भी हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके महत्व को समझना चाहिए, है ना। तो यही हमने पूरी कविता में पढ़ा था और अब हमें क्या करने हैं, इसके प्रश्न उत्तर, है ना। तो प्रश्न अभ्यास के लिए आप लोग पेज नंबर 55 पर आ जाइए। यहाँ पेज नंबर 55 पे पहला प्रश्न देखिए क्या है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। संगतकार यानी जो मुख्य गायक होता है, उसके जो सहायक कलाकार होते हैं ना, उसके बारे में बताया। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कवि है वो और किस तरह के व्यक्तियों की तरफ हमारा ध्यान खींचना चाहता है, तो हम लिखेंगे संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य क्षेत्र या किसी भी वर्ग में जो सहायक कर्मचारी होते हैं, जो सहायक कलाकार होते हैं, उनकी ओर संकेत करना चाह रहा है। जैसे संगतकार के जो होते हैं वो मुख्य गायक के साथ गाते हैं, है ना, अपने स्वरों को स्वर मिलाते हैं उनके स्वर से, उनके गायन में नई ताजगी फूंकते हैं, लेकिन फिर भी सारा श्रेय जो है वो किसको प्राप्त होता है, मुख्य गायक को। सहायक कलाकारों को आधे लोग जानते भी नहीं है। तो वही ऐसे ही लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो समाज में पर्दे के सामने ना आके पर्दे के पीछे से ही सहारा देते रहते हैं और त्याग की भावना से अपना नाम कभी आगे नहीं आने देते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। देखिए प्रश्न 2 क्या है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो जब मैं कविता पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था ना कि जो संगतकार जैसे लोग हैं वो सिर्फ संगीत के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य कई क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। तो वो क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सिनेमा का क्षेत्र हो सकता है ना, फिल्म जगत जो है हमारे, बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं, उसमें हो सकता है। जैसे फिल्मों में अनेकों सह कलाकार होते हैं, जो मुख्य अभिनेता या मुख्य अभिनेत्री होती है, हमारे हीरो या हीरोइन, उसके अलावा भी तो बहुत से लोग होते हैं ना जो फिल्म में एक्टिंग कर रहे होते हैं, अभिनय कर रहे होते हैं, तो वो उनके सह कलाकार होते हैं, है ना, डुप्लीकेट्स होते हैं, सहनर्तक होते हैं, यानी जब हीरो नाच रहा है उसके पीछे जो लोग नाच रहे हैं वो होते हैं, स्टंटमैन होते हैं। और ऐसे ही दूसरा क्षेत्र अगर हम देखें, तो अगर हम कोई घर बनवा रहे हैं, कोई इमारत बनवा रहे हैं, तो उसमें जो मजदूर लगे होते हैं वो होते हैं सहायक व्यक्ति, है ना, जिनके सहारे से ही घर बनकर तैयार होता है, लेकिन उनको उनकी मेहनत का पूरा श्रेय नहीं मिल पाता है, कोई उनके योगदान को उतना महत्व नहीं देता है जितना असल में मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे मैंने आपको 2 क्षेत्र बताए, आप चाहें तो और भी क्षेत्र ढूंढकर लिख सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो गया, तो उसमें डॉक्टर को मुख्य भूमिका में रखा जाता है, लेकिन उसके साथ जो नर्स, जो कंपाउंडर, जो दवाई देने वाले, जो पट्टी करने वाले, साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं, उनको कोई ध्यान में नहीं रखता, जबकि उनकी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखिए, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो जैसा कविता में बताया गया है ना कि क्या क्या भूमिका होती है उनकी, किस किस तरीके से वो मदद करते हैं, वही हमें इस प्रश्न में बताना है। जैसे जब गाते समय मुख्य गायक या गायिका का स्वर भारी हो जाता है, ये ना गर्जन भरी आवाज लिखी थी, जब वो भारी होने लगता है तो सहायक गायक अपनी मधुरता से उनकी आवाज को सहारा देता है, पहली चीज। दूसरी, जब मुख्य गायक या गायिका अंतरे की जटिलता में खोने लगते हैं तो उनको संभालने का काम भी संगतकार ही करते हैं। कहीं पे अगर लग रहा होता है कि मुख्य गायक भटक रहा है ना, जिस स्वर से शुरू किया था उसे आगे निकल रहा है, तो उनको वापस लाने का काम, उनके भटकाव को रोकने का काम भी संगतकार ही करता है। फिर आखिर में लिखा था, कविता की आखिर पंक्तियों में ध्यान दिया हो आपने, तो तार सप्तक के जो गायन जो गाना होता है उस समय मुख्य गायक का स्वर धीमा होने लगता है ना, उसकी आवाज थकने लगती है, गला बैठने लगता है, क्योंकि उसकी हिम्मत अब टूट रही होती है। तो ऐसे में कौन साथ देता है? संगतकार। संगतकार ही उसकी गति को आगे बढ़ाता है और उसकी हिम्मत को टूटने नहीं देता है। कहीं पे भी मुख्य गायक को अकेला महसूस ना हो, इसीलिए संगतकार उसको समय समय पर सहारा देता रहता है। ठीक है, कविता में से आप ढूंढेंगे आपको सारी भूमिकाएं मिल जाएंगी कि संगतकार कैसे कैसे मदद करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 4 देखेंगे। ठीक है, भाव स्पष्ट कीजिए और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अभी आपको पंक्तियां दी गई हैं, कविता की आखिरी पंक्तियां, और इसका आपको भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? एक तरीके से समझिए, इसमें आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करने के लिए पहले संदर्भ लिखा जाता है और फिर हम व्याख्या पे आते हैं। तो संदर्भ इसका क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां मंगलेश डबराल जी द्वारा लिखी गई कविता संगतकार से ली गई हैं। अब आप व्याख्या पे आएंगे कि इसमें कवि संगतकार की भूमिकाओं और उनके योगदान के महत्व को दर्शा रहा है। वो बता रहा है कि जब मुख्य गायक गाता है तो उसके पीछे पीछे संगतकार भी अपना स्वर मिलाता है, वो भी उसके साथ गाता है। लेकिन जो संगतकार है वो हर समय इस बात का ध्यान रखता है कि मेरी आवाज मुख्य गायक की आवाज से अधिक ऊंची या अधिक ऊंचे स्वर में ना जाए। क्यों? क्योंकि वो मुख्य गायक की महत्ता को, उसकी प्रसिद्धि को कम नहीं करना चाहता है ना। यही जो हिचक आया है, जैसे आप पंक्तियां पढ़ेंगे तो दिखेगा ना कि उसकी आवाज में हिचक सुनाई देती है। हिचक का मतलब क्या होता है? संकोच। कहीं ना कहीं एक संकोच है जो उसके गायन में दिखता है कि वो पूरी तरह खुलकर नहीं गा रहा है। क्योंकि जो लोग गाते हैं ना, अगर वो निसंकोच होकर गा रहे हैं तो उनका गला काफी खुला हुआ होता है, काफी ऊंचे सुर भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ संगतकार की मजबूरी होती है कि वो मुख्य गायक से ऊंचा स्वर नहीं लगा सकता, अपनी आवाज को उससे तेज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे मुख्य गायक की महत्ता को बनाए रखना होता है। और यही जो हिचक या फिर यही जो संकोच है वो उसकी आवाज में, उसके गायन में साफ झलकता है। कितना भी उत्तम संगतकार हो लेकिन वो मुख्य गायक से खुद को कम ही आंकता है, खुद को उससे कम ही रखता है। अब लेखक आगे, कवि आगे क्या कहते हैं कि इसमें हमें उसकी विफलता को नहीं देखना चाहिए। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि जो व्यक्ति है, संगतकार जो व्यक्ति है, वो किसी तरीके से असफल है, विफल हो गया अपने काम में, या फिर वो कमजोर है। ये उसकी कमजोरी का या असफलता का कोई प्रमाण नहीं देता, जबकि ये उसकी मनुष्यता का प्रमाण देता है। उसमें जो इंसानियत है ये उसे दर्शाता है कि उसमें शक्ति है, उसमें प्रतिभा है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन वो स्वयं को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि जो उसके गुरु हैं, जो उसके स्वामी हैं, या जो मुख्य गायक हैं जिन्हें वो सब कुछ मानता है, उन्हें वो महत्व देने की कोशिश करता है, चाहता है कि यही आगे बढ़े। और उसके ये जो त्याग की भावना है, जो सम्मान की भावना होती है अपने मुख्य गायक के प्रति, यही उसकी मनुष्यता को दर्शाता है। ठीक है, तो संगतकार को हमें कमजोर व्यक्ति नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण और सम्मान्य दृष्टि से उसे देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखिए। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र हो, जब कोई इंसान प्रसिद्धि पा लेता है, सफलता पा लेता है, तो वो उसकी अकेले की नहीं होती है, उसकी सफलता में कई लोगों का योगदान होता है, कई लोगों का हाथ होता है। तो ऐसे आपको कोई उदाहरण देके समझाना है कि कौन कौन लोग एक कार्य में शामिल हो सकते हैं। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि हाँ, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले या सफलता पाने वाले लोगों को अनेक लोगों का योगदान प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई प्रसिद्ध गायक या गायिका जब सफलता पाते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो उसमें उनके साथ उनके संगीत निर्देशक है ना, उनके गीतकार जिसने बोल लिखे गाने के, तकनीकी साउंड जो डालते हैं वो, वाद्य यंत्र बजाने वाले, संगतकार, उनके सहायक कलाकार, सहगायक, निर्माता, ऐसे कई लोग होते हैं जिनका उन्हें सहयोग प्राप्त होता है या फिर उनका योगदान होता है। और इन लोगों के बिना वो जो मुख्य गायक या गायिका है वो सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। इन लोगों के सहारे की वजह से, समर्थन की वजह से, सहयोग की वजह से, इनकी हिम्मत की वजह से ही वो आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसके साथ साथ बहुत से लोगों का योगदान उसमें होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 6 पर। देखिए प्रश्न 6 क्या है। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये जो कवि ने कविता में लिखा है ना कि तार सप्तक में जब गाने लगता है तो मुख्य गायक का स्वर बिखरने लगता है, उसकी आवाज थकने लगती है, तो ऐसे में संगतकार क्या भूमिका निभाता है, हमें यह बताना है। तो हम क्या लिखेंगे कि तार सप्तक में गाते समय जो मुख्य गायक का स्वर है उसे बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, इसलिए कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि मेरा स्वर टूट रहा है और उसका कंठ से जो ध्वनि निकलती है उसे बहुत विस्तार देने में, ऊंचाई देने में कहीं ना कहीं वो कमजोर होने लगता है, उसका गला बैठने लगता है, हिम्मत टूटने लगती है, जो उसका आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है। तब संगतकार जो होता है वो उसके जो मुख्य धुन होती है उसे दोहराता है ताकि एक मिनट का ठहराव मुख्य गायक ले सके, एक मिनट का पॉज ले सके, उस समय में वो अपनी श्वास को दोबारा एकत्रित करके फिर से एक ऊंचा स्वर लगा सकता है। इसलिए मुख्य गायक को सहारा देने के लिए संगतकार हर समय खड़ा रहता है। जहां कहीं भी मुख्य गायक की आवाज में बिखराव महसूस होता है या आवाज बिखरने वाली होती है, वहां पर संगतकार उसे संभाल लेता है ना, और उसको सहारा देता है, उसके आत्मविश्वास को कम नहीं होने देता, उसकी हिम्मत को टूटने नहीं देता है। और कवि ने इसी बात का वर्णन करते हुए ऐसे बताया है कि जो संगतकार है वो मुख्य गायक को ऐसे सहारा देता है कि उसे कहीं भी ये ना लगे कि वो रास्ते में अकेला चल रहा है। संगतकार ये आभास दिलवाता रहता है कि हर मुश्किल में, हर कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ आगे चल रहा हूं और तुम्हें मैं भटकने नहीं दूंगा, तुम्हें खोने नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। जहां पे तुम्हारी आवाज कमजोर पड़ेगी वहां पर भी मैं तुम्हारा साथ इसी तरीके से देता रहूंगा। और इस तरह से वो जो मुख्य गायक है उनकी भूमिका को, मतलब उनकी जो हिम्मत है उसे बढ़ाते रहते हैं और मुख्य गायक बहुत अच्छे से फिर अपना काम कर पाते हैं, बहुत अच्छे से कोई भी प्रस्तुति दे पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। सफलता के चरम शिखर पे जब यानी एकदम ऊंचाई पर पहुंचने लगते हैं कोई व्यक्ति सफलता पाके, तो जो उसके सहयोगी लोग होते हैं वो कैसे संभालते हैं। तो इसमें जैसे ये तार सप्तक वाली लाइन लिखी ना कि जो मुख्य गायक होता है उसका स्वर बिखरने लगता है, तो तब जाके सहायक कलाकार उसका साथ देने लगता है कि इसका स्वर टूटे ना, इसकी आवाज में अवरोध पैदा ना हो। वैसे ही सफलता पर यदि कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है सफलता की और वहां जाके वो लड़खड़ाने लगे, डगमगाने लगे उसके कदम, तो उसके सहयोगी क्या कर सकते हैं, अपने सुझावों से, है ना, अपनी अच्छी अच्छे सुझाव देकर, अपनी अच्छी अच्छी सलाह देकर उनके उनको नई दिशा दे सकते हैं। जहां उनका मनोबल टूटता हुआ लगे, जहां हिम्मत टूटती हुई लगे, जहां लगे बस अब हिम्मत जवाब दे रही है, वहां वो उन्हें संभाल सकते हैं, है ना, मानसिक तौर पर उन्हें मजबूत महसूस करवा सकते हैं, उनके मनोबल को बढ़ा सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। कहीं ना कहीं जो उनकी आत्मशक्ति खो रही है या फिर जो व्यक्ति सफलता के ऊंचाई पर पहुंच जाता है, फिर एक समय जाकर कहीं ना कहीं उसे थकान महसूस होती है ना, तो वो अपनी आत्मशक्ति को और अपने आत्मविश्वास को खोया हुआ महसूस करने लगता है। तब सहायक कलाकार उस आत्मशक्ति को एकत्र करते हैं, उसे फिर से उठने की हिम्मत देते हैं और उसे ऐसी प्रेरणा देते हैं कि जीवन में उसे हमेशा नया संबल मिलता रहे, उसे सहारा मिलता रहे। कोई भी सहयोगी जो व्यक्ति होता है ना, जिसका योगदान होता है एक व्यक्ति को सफलता के शिखर पर पहुंचाने में, तो वो हमेशा अच्छे सुझाव देगा। आपको कुछ पॉइंट्स में बता दे रही हूँ ताकि अब आसानी से समझ में आ जाए। आपको अच्छे सुझाव देगा, है ना, अच्छी सलाहें देगा, आपको नई दिशा दिखाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपके मनोबल को बढ़ाएगा, जहां हिम्मत टूटती हुई दिखाई देगी आपको सहारा देगा, आपकी आत्मशक्ति आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपको प्रेरणा देगा, और इस तरीके से हर कदम पर वो व्यक्ति आपका सहारा बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। आगे देखिए रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 8। कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। अब आपको कल्पना करके ये लिखना है कि आपका कोई कार्यक्रम है जहां आपको या तो गाना है या आपको नृत्य प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार अगर वहां नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो पूछ रहे हैं क, ऐसे में आप अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे, यदि हमारे सहायक कलाकार नहीं पहुंच पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें घबराहट होगी, है ना, हमारी हिम्मत थोड़ी सी टूटने लगेगी, और जितना अच्छा हम अपने कार्यक्रम को बना सकते थे, कहीं ना कहीं वो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, शायद उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। और ख, ऐसी परिस्थिति का आप कैसे सामना करेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे, यदि हमारे सहायक कलाकार नहीं पहुंच पाते हैं तो किसी तरह से या तो हम कोशिश करेंगे कि हम अकेले ही पूरा मंच संभाल लें, है ना, या फिर अगर कोई व्यक्ति है जो हमारे सहायक कलाकार का काम कर सकता है, हमारा साथ दे सकता है मंच पे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका सहयोग मांगने में संकोच ना करें। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, ठीक है, पेज नंबर 56 पर। प्रश्न 9 देखिए। आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। अब आपको ये बताना है कि जैसे आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में भी कोई कार्यक्रम होता होगा, कोई प्रोग्राम, जैसे वार्षिक समारोह जो होता है ना, एनुअल फंक्शन, तो उसमें जो लोग आते हैं क्या देखते हैं, स्टेज पे नाटक हो रहा है, स्टेज पे नृत्य हो रहा है, स्टेज पे कोई गायन है, कोई गा रहा है, लेकिन इसके अलावा सहायक लोग कितने होते हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो आपको उन्हीं की भूमिका बताते हुए एक अनुच्छेद लिखना है। इसके उत्तर में आपको बताना है कि पीछे लाइट की व्यवस्था ठीक बनी रहे, माइक और आवाज साउंड सिस्टम ठीक बना रहे, है ना, वाद्य यंत्र बजाते रहे लोग, जो सहायक लोग होते हैं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ये ना हो तो कोई भी समारोह शायद उतनी अच्छे से पूरा ना हो सके जितनी अच्छे से इनके सहयोग की वजह से पूरा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 10। किसी भी क्षेत्र में संगतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते होंगे। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि जो संगतकार या सहायक कलाकार की श्रेणी के लोग होते हैं, वो प्रतिभावान होते हुए भी शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि कहीं ना कहीं उनमें वो त्याग की भावना होती है कि वो जो मुख्य कलाकार होता है उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, और यदि वो उन्होंने उससे ही सीखा है, वो उसके गुरु हैं, तब तो वो सम्मान की दृष्टि से भी कभी उनसे आगे नहीं निकलना चाहते हैं। वो हमेशा अपने कार्य को उनसे कम ही दिखाते हैं ताकि मुख्य कलाकार की भूमिका कहीं भी कम ना हो और उसका जो श्रेय है वो उसे वैसे का वैसा ही मिलता रहे, ठीक है। और इसी वजह से चाहे उनमें कितनी भी शक्ति हो, कितनी भी प्रतिभा हो, वो सामने उतनी अच्छे से उभर कर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मुख्य कलाकार को सहारा देते हैं, उसे ही आगे बढ़ाते हैं, स्वयं आगे आना नहीं चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पाठ्येतर सक्रियता। आप फिल्में तो देखते ही होंगे, अपनी पसंद की किसी एक फिल्म के आधार पर लिखिए कि उस फिल्म की सफलता में अभिनय करने वाले कलाकारों के अतिरिक्त और किन किन लोगों का योगदान रहा। तो फिल्में तो हम सब देखते हैं, अब आपको ये बताना है कोई फिल्म जो आपको पसंद हो उसके बारे में लिखना है कि मुख्य कलाकार यानी जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं वो ये हैं, लेकिन इसके अलावा आपको पता करना होगा कि इसके डायरेक्टर कौन रहे, उसके निर्देशक कौन रहे, प्रोड्यूसर कौन यानी निर्माता कौन है, है ना, किस किस ने उसमें गाना गाया है, कौन बैकग्राउंड में डांस कर रहा है, कौन कोरियोग्राफर है, यानी कितने लोगों ने अपना योगदान दिया है, अपना सहयोग दिया है उस फिल्म को पूरा करने में, ये जानकारी आपको एकत्रित करनी होगी। इसके साथ ही जो अन्य सहकलाकार होते हैं जो अभिनय करते हैं, जैसे जो हीरो हीरोइन के मम्मी पापा का रोल करते हैं या उनके भाई बहन का रोल करते हैं या उनके दोस्तों का रोल करते हैं, ये जो साइड एक्टर्स होते हैं ये भी सहायक कलाकार की भूमिका में ही होते हैं, इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आपके विद्यालय में किसी प्रसिद्ध गायिका की गीत प्रस्तुति का आयोजन है। क, इस संबंध पर सूचना पट के लिए एक नोटिस तैयार कीजिए। तो आपको नोटिस लिखना होगा, नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले नोटिस हेडिंग डालते हैं, पहले विद्यालय का नाम डालते हैं, आपका जो भी विद्यालय का नाम होगा पहली पंक्ति में आप वो नाम लिखेंगे, दूसरी पंक्ति में नोटिस, और तीसरी पंक्ति में हमें विषय लिखना होता है कि नोटिस हमने क्यों लिखा है। तो हम लिखेंगे विद्यालय में किसी भी प्रसिद्ध गायिका का नाम लिख दीजिए, जैसे अलका याग्निक जी, विद्यालय में अलका याग्निक जी की गीत प्रस्तुति। अब आप उसके नीचे आएंगे, साइड में डेट लिखेंगे और दूसरी तरफ दिन लिखेंगे। जैसे आपने लिखा कि 5 मई 2020 और दिन लिख दिया उधर बुधवार, फिर आप नीचे से शुरू करेंगे, विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में दिनांक 10 मई या कोई भी डेट को भारत के प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक जी प्रस्तुति देने जा रही हैं। इस आयोजन के लिए हमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता होगी, तो जो लोग इस कार्यक्रम में मदद करने के इच्छुक हैं या इसका आनंद उठाना चाहते हैं वो अपना नाम प्रिंसिपल ऑफिस में दे सकते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा लिख के और फिर पूरे नोटिस को एक बॉक्स में बंद कर देंगे, है ना, एक डिब्बे में, ये होता है नोटिस लिखने की प्रक्रिया। ख, देखिए, गायिका व उसके संगतकारों का परिचय देने के लिए आलेख या स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। आपको स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी, तो उसमें आपको क्या लिखना होगा, गायन प्रस्तुति की डेट कौन सी है, कौन सी दिनांक को होगा, कौन से दिन को होगा, किस समय होगा, और फिर उसके नीचे लिखा जाएगा मुख्य कलाकार या मुख्य गायिका जो भी हैं, जैसे अलका याग्निक जी, फिर उनके संगतकार यानी कौन लोग होंगे जो वाद्य यंत्र पर रहेंगे, कौन लोग वाद्य यंत्र बजाएंगे, कौन उनको पीछे से थोड़ा सा सुर देंगे, कौन उनके आवाज मिलाकर गाएंगे, जो भी हो वो आप मुख्य गायक या गायिका से पूछकर पूरी सूची एक तैयार कर सकते हैं, ताकि सबको मुख्य कलाकार के अलावा जो संगतकार हैं, है ना, मुख्य कलाकार के अलावा जो संगतकार या सहायक कलाकार हैं उनके बारे में भी जानने का मौका मिल सके। अब देखिए, शब्द संपदा, यानी यहाँ पे आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, कविता पढ़ते समय जो कठिन शब्द आए होंगे उनके सरल अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला शब्द है संगतकार, इसका अर्थ होता है मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या कोई वाद्य बजाने वाला कलाकार या सहयोगी। अगला है गरज, यानी ऊंची गंभीर आवाज। अंतरा, स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण, जटिल, कठिन, तान, संगीत में स्वर का विस्तार। नौसिखिया, जिसने अभी अभी सीखना आरंभ किया हो या जो किसी भी कार्य में नया हो, उसने नया नया सीखा हो, वो होता है नौसिखिया। राख जैसा कुछ गिरता हुआ, जो कविता में आया ना उसकी आवाज में था, राख जैसा कुछ गिरता हुआ यानी बुझता हुआ स्वर, आवाज डूबती हुई या गला बैठता हुआ, वो उसका मतलब हो गया राख जैसा कुछ गिरता हुआ, यानी स्वर बुझ रहा है, आवाज धीमी पड़ रही है। आगे ढाणस बंधाना यानी तसल्ली देना, सांत्वना देना या फिर हिम्मत देना, है ना, किसी को सहारा महसूस हो सके, हिम्मत महसूस हो सके, वो होता है ढाणस बंधाना। अब देखिए, जो आपके पाठ के किसी भी पाठ के अंत में जो अतिरिक्त जानकारी दी गई होती है वो भी यहाँ पे कुछ दी गई है, यह भी जाने। इसमें सरगम और सप्तक, ये दो चीजें क्या होती हैं, क्योंकि ये संगीत से कहीं ना कहीं संबंधित होंगी, इसीलिए आपको यहाँ पे इसकी जानकारी दी जा रही है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि सरगम क्या होता है ना। संगीत के लिए 7 स्वर तय किए गए हैं, वे हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन्हीं नामों के पहले अक्षर लेकर इन्हें सारे गामा पधा नी कहा गया है, ठीक है। ये जो 7 स्वर हैं संगीत के, इतना तो आपने सुना ही होगा ना कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, तो उनके नाम आपको बताए गए हैं, क्या होता है षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, और इनके पहले पहले अक्षर को लेकर सारे गामा पादानी, ये उनको नाम दिया गया है। आप अक्सर इतना तो आपने सुना ही होगा कि संगीत के 7 स्वर कौन से होते हैं, सारे गामा पादानी। इन्हीं 7 स्वरों को मिलाकर सरगम तैयार होती है ना, यानी 7 स्वरों को एक साथ अगर हम कहें तो वो हो जाती है सरगम, ठीक है। सरगम समझ में आ गया आपको। सारे गामा को ही हम पहले सीधा और फिर उल्टा गाते हैं, जैसे सारे गामा पा धा नी सा नी ध प म ग रे सा, है ना। तो ये जो चीज होती है ये हो जाती है सरगम, सरगम गाना, या फिर तो आप इन स्वरों का इस्तेमाल करके जब हम कुछ गाते हैं तो वो हो जाता है सरगम, यानी 7 स्वरों का संग, ठीक है। सरगम यानी 7 स्वरों का संग। अब आगे देखिए, सरगम हमने समझ ली, अब आगे है सप्तक। सप्तक क्या होता है? सप्तक का अर्थ है 7 का समूह। 7 शुद्ध स्वर हैं, इसलिए यह नाम पड़ा, लेकिन ध्वनि की ऊंचाई और निचाई के आधार पर संगीत में 3 तरह के सप्तक माने गए हैं। यदि साधारण ध्वनि है तो उसे मध्य सप्तक कहेंगे, और ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहेंगे, तथा ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे है तो उसे मंद्र सप्तक कहते हैं। देखिए, स्वर हो गए हमारे पास 7, स्वर जो हैं वो 7 हो गए, लेकिन जो ध्वनि होती है ना, कि कब उन स्वरों को ऊंचाई पे ले जाना है, कब स्वरों को नॉर्मल गाना है, साधारण रूप से कौन कब उन स्वरों को थोड़ा सा आवाज को धीमा करके गाना है ना, तो इसके आधार पर सप्तक तय किए जाते हैं, और 3 सप्तक माने जाते हैं। मध्य सप्तक यानी जब हम साधारण ध्वनि पे गा रहे हैं, उससे तेज गाते हैं तो तार सप्तक, और उससे धीरे गाते हैं तो मंद्र सप्तक। कविता में भी आया था ना कि तार सप्तक में अक्सर गायक का स्वर टूटने लगता है, क्योंकि तार सप्तक साधारण ध्वनि से ऊंची होती है, उसमें ऊंचे स्वर हमें लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाते हैं 3 तरह के सप्तक, और यहाँ आपकी जो कविता है संगतकार वो पूरी होती है। मिलते हैं अगले ऑडियो में अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।